एक है Simone do Gymnasium Boronka Udharkia. So, Idamadar, is when you have no Idamadar, Ashtakate ho. Every day we sing the Idamadar prayers. So, Bhagwan Krishna jab prakat hote hain, apne divya leela prakat karte hain. और ये अद्भुत लीला है जिसकी तुलना ना कोई देवता देवी कर पाया है ना कर सकेगा. तो भगवान ने अपनी बाल लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया था. और आपने पढ़ा किस प्रकार अनेक असुरों का भी उन्होंने वध किया. तो ये सदा माता एक दिन अब मक्खन मक्खन बड़े यशोदा वाल चर्निंग बटर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा वी चैंटिंग द वंडर अबाउट द वंडरफुल पास्ट टाइम दैट द लॉर्ड हैज ऑलरेडी परफॉर्म. The Lord had already killed the very powerful demon, and the Brijvasis were just amazed, wondering, who is this boy? Is he a demigod? Or he seems to have some special mercy of Narayan. So Bhagavan had apni adbhut leela aarambh kar di thi, anek asuron ka vadh ho gaya tha, aur Yashoda Mata nayi ka manthan karte hue भगवान की इन लीलाओं का चर्चा भी कर रही थी. तो इसे हमें क्या संदेश मिलता है, हम सभी अपना कार्य करते करते भगवान का गुणगान कर सकते हैं. आप चैतन्य चतुर्मिता में कथा पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथ ही गुनीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, और गुनीचा मंदिर की सफाई करते हुए हाथ से और पैरों से तो कार्य कर रहे थे, पर जीभ से केवल हरे कृष्ण मंदिर का उच्चारण कर रहे थे. तो जैसे मंदिर यशोदा भी कार्य करते समय भगवान के अनेक लीलाओं का गुणगान कर रहे थे. तो साथ में दूध उबल रहा था भगवान के, उनकी माता की गोद में बैठे थे और दूध उबल रहा था. तो माता ने देखा कि दूध उबल कर नीचे आ रहा है, तो माता ने बेटे को छोड़ दिया गोद से नीचे, और बेटा क्रोधित होकर आगे जाकर उसने वो मटकी छोड़ दी जिसमें मक्खन था, और मक्खन लेकर कहाँ गए, मंदिरों को जब यशोदा माता ने देखा कि उम्र की टूट गई है, वो समझ गए कि ये उनके बेटे की शरारत है. और यशोदा माता गई बेटे के पीछे लकड़ी लेकर, और भगवान को पता था एक तरह से तो मक्खन बांट रहे थे, दूसरी तरफ से उनको चिंता थी कि मेरी माँ किसी समय भी आएगी, और भगवान देख रहे थे. भगवान यशोदा माता लकड़ी के साथ बेटे को पकड़ने आई, और जब बेटे को पकड़ लिया तो उन्होंने क्या देखा, क्या देखा, बेटा घबरा रहा है. और जो घबरा रहा है तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी को फेंक दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि बेटा घबरा रहा है तो लकड़ी को फेंक दिया. और बेटा बेटे को डांटने लगे. उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इतना शरारती है, रोज की गोपियां भी शिकायत करते रहती हैं, और आप लोग ब्रह्मानंद घाट में आपने वो लीला सुनी कि भगवान ने पूरे विश्व का दर्शन दिया माता को, और उस समय भी आपने सुना था कि पड़ोस की गोपियां शिकायत कर रही थी यशोदा माता से कि आपका बेटा आकर हमारे घर में शरारत करता है, मक्खन चुराता है, दही चुराता है। तो यशोदा माता ने कहा कि मैं बेटे को पान देती हूँ उखल के साथ, और पान दूंगी थोड़ी देर के लिए तो शैतानी भविष्य में कम करेगा। जैसे क्लास में कभी कभी आप लोगों को याद है, आपको सजा मिली होगी, टीचर कहते थे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो माता का विचार ये था कि बेटे को बांध दिया जाए और फिर बेटा शरारत कर लो कर्म कर देगा बंद कर देगा। तो माता ने एक छोटी रस्सी दी बेटे को बांधने के लिए, वो रस्सी निकली दो उंगली छोटी। फिर उन्होंने कई और रस्सियों को जोड़ा और ये सारी रस्सियां जोड़कर भी क्या दो उंगली छोटी निकली। तो यशोदा माता बड़ा प्रयास कर रही थी बेटे को बांधने के लिए, पर वो बांध नहीं पा रही थी। सारी रस्सियों को जोड़ दिया, तो सब वो जोड़ कर भी ये रस्सियां दो उंगली छोटी निकल रही थी। और जो दूसरी गोपियां थी पड़ोस की, वो ये लीला देख रही थी कि यशोदा माता प्रयास कर रही है बांधने के लिए और सफल नहीं हो रही, तो भी हंसने लग गई। और भगवान ने देखा कि पड़ोस की गोपियां उनके माँ पर हंस रही है, तो फिर भगवान ने क्या किया, उनको बांधने दिया। तो इस विषय में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये दो उंगलियों का छोटा होने का भाव ये है, एक है कि आप प्रयास करोगे तो ही परम भगवान को समझ सकोगे, और परम भगवान को समझ सकोगे केवल जब भगवान प्रसन्न होंगे आपकी सेवा के द्वारा। जैसे कि यशोदा माता ने प्रयास तो बहुत किया भगवान को बांधने के लिए, पर सफल नहीं हुई। फिर जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ ने इतना प्रयास किया है, इज वर्किंग सो हार्ड टू टाई मी डाउन, द अदर गोपीज आर लाफिंग, उन्होंने देखा कि सब हंसी कर उठा रहे हैं, भगवान मान गए कि मेरी माता मुझे बांध सकती है। और जब भगवान माने कि मेरी माता मुझे बांध सकती है, जब ही वो बांध पाए। तो हम सबको भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो परम भगवान की कृपा से हम उन्हें समझ पाएंगे, और अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तो प्रयास कैसे करेंगे, ये है वैदिक भक्ति के द्वारा। आगे जाकर हम आपको भागवतम का एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे जिसका उच्चारण यहाँ ये कुएं के दो पुत्रों ने किया था, जो भी संबंधित है आज की लीला से। तो भगवान यशोदा माता ने कहाँ बांधा भगवान को, उखल के साथ। तो भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं, और पिछले मिलेनियम में एक और लीला बीती थी, वो लीला थी ललकवाड़ा और मनीपी वाली। ये दो थे कुबेर के पुत्र। और कुबेर कौन है? देवता, देवताओं के खजांची, बहुत धनी है इस पृथ्वी पर के करोड़पतियों से लाखों गुना ज्यादा धनी। तो मनीपी व नलकवाड़ा धनी पिता के बेटे थे। और ये देखा जाता है धन, खूबसूरती, भौतिक शिक्षा, ऊंचा पद, इन सब के प्रभाव से हम क्या कई बार घमंडित हो जाते हैं। और ये भावना होती है कि इंद्रिय तृप्ति किया जाए। तो इन चीजों को आध्यात्मिक जीवन का शत्रु माना जाता है। कहते आप समाज में भी देखते हो जो धनी खानदान के पुत्र हैं या बेटियां हैं उनके पास हर बुरी आदत है। और बहुत कम संख्या में धनी लोग राज्य के मार्ग को स्वीकार करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास धन है तो धन के द्वारा हर चीज प्राप्त हो सकती है। तो ललकवाड़ा मनीग्रीव क्योंकि कुबेर के पुत्र थे, शिव जी के भी उपासक थे और कैलाश पर्वत वहां जाने की सुविधा थी उनके पास। और वहां मंदकिनी गंगा बहती है। अक्सर हम गंगा में जाते हैं अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए। तो कुबेर के पुत्र मनीग्रीव मनीकिनी गंगा में स्त्रियों के साथ आनंद उठा रहे थे। और पापा जी इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि गंगा में हम जाते हैं पवित्रता प्राप्त करने के लिए, यहाँ कुबेर के पेड़े ये बहुत से कार्यों में जुड़े हुए थे। तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे और ये शराब के नशे में भी थे, वरुणी शराब। तो नारद मुनि जब वहां से गुजर रहे थे कि जो नंगी स्त्रियां थी उन्होंने तो अपने शरीर को ढक दिया। और ये जो दो बेटे थे वो नंगे रहे शराब के नशे में, पहचान नहीं पाए कि महान संत नारद मुनि यहाँ उपस्थित है। तो नारद मुनि ने सोचा कि मुझे इन दो बेटों का उद्धार करने दो। तो नारद मुनि ने क्या किया, उन्हें श्राप दी कि तुम पेड़ बन जाओ। पर पेड़ कहाँ बनो? पेड़ बनो नंद महाराज के आंगन में। ये नहीं कि आप पेड़ बनो लंदन में या न्यूयॉर्क में, नंद महाराज के आंगन में। और ब्रज में नंद महाराज के आंगन में पेड़ भी अत्यंत भाग्यशाली है। जैसे हमारे कृष्ण बालराम मंदिर वृंदावन में वो तमाल का पेड़ है, बड़ा भाग्यशाली है वो पेड़। सारा दिन मंगल आरती से शाम की आरती तक उपस्थित रहता है। हम लोग एक आरती में जाते हैं और एक आरती के बाद भाग जाते हैं, थोड़ी देर मंदिर में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पर ये जो पेड़ है उधर तमाम पेड़ सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन दे रहा है, अत्यंत भाग्यशाली है। तो इन दो पुत्रों को तो ये श्राप दिया एक प्रकार से कि तुम पेड़ बनो, पर साथ में ये वर भी दिया कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात तुम्हें क्या प्राप्त होगा, परम भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। देवताओं के 100 वर्षों के लिए हमारे पृथ्वी का जो कैलेंडर है और देवताओं के कैलेंडर में महान अंतर है। हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है, तो उन्हें पिछले मिलेनियम में ये श्राप दी थी कि देवताओं के 100 वर्षों के लिए तुम पेड़ बनो, और पेड़ क्या है, नंगे खड़े रहते हैं, और कुबेर के पुत्र भी नंगे खड़े थे महान संत नारद मुनि के सामने। और साथ में उन्होंने ये वर भी दिया कि देवताओं के 100 वर्षों की समाप्ति पर तुम्हें परम भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। आप सब ये श्राप स्वीकार करने को तैयार हो? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं, जैसे कि नरसिंह देव भगवान की लीला में ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने लगभग हर प्रकार का वर प्राप्त कर लिया था। जहाँ मेरी मृत्यु होगी, सुबह या रात शाम, न आकाश में, न पृथ्वी में, न सागर में, न किसी बीमारी के द्वारा, न किसी पशु के द्वारा। तो हिरण्यकश्यप सोचने लगे, अब मुझे हर प्रकार का वर प्राप्त हो गया है, अब मैं अमर रहूंगा। और भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा के सारे वचनों का पालन करते हुए क्या किया, हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा, दैट आफ्टर किलिंग हिरण्यकश्यप द लॉर्ड सेड, डोंट गिव दीज बेनिडिक्शंस इन फ्यूचर, यू मेड माय क्योर वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा ब्रह्मा को, हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात, भविष्य में इतनी ऐसे वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बड़ा कठिन बना दिया था। तो भगवान अपने एक भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। तो यशोदा माता ने बेटे को बांध दिया था उखल के साथ, तो भगवान को याद था कि मेरे भक्त नारद मुनि ने एक खास वर दिया है, वो ये है कि उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान को बांधा हुआ था उखल के साथ, भगवान आगे बढ़े और उसके द्वारा वो दो वृक्ष गिरे। और दो पेड़ों से क्या निकले, धनसरोवर और मणिमहिमा। तो जैसे दो पेड़ गिरे, उस समय यशोदा माता रसोई में थी। जब दो पेड़ गिरे, इतनी भारी आवाज आई कि यशोदा माता भागी भागी आई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और दूसरे मित्र ने कहा कि दो पेड़ गिर गए और भगवान की कृपा आपके बेटे पर नहीं गिरे। मतलब पेड़ गिरे पर बेटे से, जब बेटा जहां क्रॉल कर रहा था वहां से मुश्किल से 1 इंच दूर गिरे। तो यशोदा माता ने फिर आगे क्या पूछा, कैसे गिरे ये दो पेड़। तो ग्वालों ने कहा, भगवान के मित्रों ने कहा, आपके बेटे ने गिराया है। तो यशोदा माता कहने लगी, कैसे संभव है कि छोटा बेटा मेरा इन दो बाप बड़े पेड़ों को गिराया। नहीं नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करती, आंधी आई होगी, तेज तूफान आया होगा, जिसके कारण ये दो पेड़ गिरे। तो जब इन पेड़ों से निकले मनुकी व मन नाना कोरा मनुकी व इन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए कि परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है, और प्रणाम करके उन्होंने नारद मुनि का आभार प्रकट किया कि नारद मुनि की कृपा से उन्हें आज परम भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और इसके पश्चात उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुतियों का उच्चारण किया, और एक खास श्लोक है जो कि आप भक्तों के लिए बहुत ही लाभदारी है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये श्लोक है, ये श्लोक है टेक्स्ट 38 भागवतम के 10 स्कंद के 10वें अध्याय से। इसका अनुवाद पढ़ूं अंग्रेजी में? Henceforward, may all our words describe your pastimes. May our ears engage in oral reception of your glory. May our hands, legs, and other senses engage in actions pleasing to you. And may our minds always think of your lotus feet. May our heads offer our obeisances to everything within this world, because all things are also your different forms. And may our eyes see the forms of Vaishnavas who are non-different from you. Tatpurya Parkan tonight? Purport by Srila Prabhupada. Here the process of understanding the Supreme Personality of Godhead is given. This is called Bhakti. Samadam Kitanam Vishnu Manan Param Sevanam Achanam Vandam Sarsyam Sakyam Atmanivedam. Everything should be engaged in the service of the Lord. Rishikesha Rishikena Sevanam. Everything, the mind, the body, and the sense organs should be engaged in Krishna's service. This is to be learned from expert devotees like Narada, Swayambhur, and Sambhur. This is the process. We cannot manufacture our own way of understanding the Supreme Personality of Godhead. But it's not that everything one manufactures or contacts leads us to understanding God. So, Kuber ke putron ne ek bahut hi sundar shlok ka uchcharan kiya, jo ki hum bhakton ke liye bada mahatvapurn hai. Wo kehte hain, ab se hamari vani sada aapki leelaon ka uchcharan kare. तो उन्होंने कहा अब से, तो ये अब से अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। अज्ञानता में उन्होंने कई गलत कार्य किए, नारद मुनि के समक्ष खड़े थे नंगे शराब के नशे में, पर नारद मुनि की कृपा से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, तब वो ये गलती फिर से नहीं करना चाहते। उसी प्रकार हम सब भक्ति में जुड़े हैं, और इससे पहले हम अज्ञानता की स्थिति में थे। तो जब आप भक्ति में जुड़ते हो, इसके पश्चात हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम किसी प्रकार से शास्त्र के विपरीत कार्य नहीं करें। तो आगे वो प्रार्थना करते हैं, हमारी वाणी सदा आपकी लीलाओं का गुणगान करे। तो जैसे हम परसों कह रहे थे ब्रजमंडल परिक्रम के दौरान आपने उन स्थानों का दर्शन प्राप्त किया जहाँ की भगवान ने अपनी अद्भुत लीलाओं को प्रकट किया था, तो हमारी वाणी द्वारा हमें क्या करना चाहिए? इन लीलाओं का कीर्तनम उच्चारण करना चाहिए, और वाणी द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण। रूप गोस्वामी जी समझाते हैं कि जल्प द्वारा भक्ति नष्ट हो जाती है, और कृष्ण कथा द्वारा भक्ति आगे बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं कुबेर के पुत्र, हमारी जीव द्वारा हम सदा क्या करें, आपका गुणगान करें। जो तो हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि जीव द्वारा हम सदा भगवान के नामों का उच्चारण करें और भगवान की लीलाओं का उच्चारण करें। और अगर हम कृष्ण कथा और भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो इसके द्वारा क्या लाभ होगा? चेत दर्पण मार्जनम, हृदय की शुद्धि प्राप्त होगी। तो आप सब जो ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे हो, आप सबका ये भाव रहना चाहिए कि अब से हमें क्या करना है, जीव द्वारा केवल कृष्ण कथा में ही रुचि लेनी है। तो जैसा में रुचि लेंगे तो भक्ति ऐसे ऐसे कमजोर होते जाएगी। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट हो सकती है। व्याहरा प्रयस जल पर जन संघर्षम का सदीर भक्ति विनती। और भगवान के नामों के विषय में जैसे आपने अनुभव किया है, जैसे आपने शास्त्र में सुना है, आप दिन रात उच्चारण करो तो भी थकोगे नहीं। कई बार भौतिक वाली व्यक्ति पूछते हैं, आप एक ही मंत्र का उच्चारण दिन रात करते हो थकते नहीं? यू चेंजिंग द सेम नेम डे नाइट, डोंट यू गेट टायर्ड? तो हमारा क्या उत्तर है? नहीं थकते। क्यों? महाप्रभु ने क्या कहा इस वचन में? भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, इसलिए भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात कर सकते हो और थकोगे नहीं। आगे मैं यार years engaged in order, आप अगर जीव के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करोगे तो कानों से भी यही सुनोगे। जब हिरण्यकश्यपु ने बेटे से पूछा, ये बताओ आज तुमने पाठशाला में अध्यापकों के द्वारा क्या सीखा है, तो पिता ये उम्मीद कर रहे थे बेटा कहेगा आप इतने महान हो। उसके बदले में बेटे ने क्या कहा? नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और पापा जी इस श्लोक के तात्पर्य में नवदा भक्ति के श्लोक का वर्णन करते हैं। तो नलकों मन जीवन ने यह प्रार्थना की कि अब से हमारे हमारा हमारी वाणी हमेशा आपका गुणगान करे और हमारे कान हमेशा आपकी गुणगान को सुने। तो अगर कोई व्यक्ति आता है आपके सामने प्रजल्प करने के लिए, और भक्तों को प्रजल्प का शौक रहता है, तो आपको क्या कहना चाहिए? हाथ जोड़ को कह दीजिएगा कि प्रभु जी मैं प्रजल्प में रुचि नहीं लेना चाहता, कृष्ण कथा करोगे तो हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। आगे कहते हैं हमारे हाथ पैर और इंद्रियां सदा उस कार्य में जुड़े जिन कार्यों द्वारा हम आपको संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव। Our goal should be to only engage in activities that will please the Lord and not displease the Lord. In this connection, we have the advice that Chaitanya Mahaprabhu gave to Sanatana Goswami. This is described in Chaitanya Charitamrita. And in giving the six principles of Sharanagati, Lord Chaitanya said, one, accept what is favorable for spiritual advancement, and two, what did he say? Who knows? Reject what is unfavorable for spiritual advancement. So what is being stated here by the sons of Kuvera are that hands and legs only be used in activities that would be pleasing. And what is pleasing to the Lord? Activities of devotional service. So, यहाँ कहा जा रहा है कि हम पैरों के, हाथों का, इंद्रियों का उपयोग केवल उन कार्यों में करें जिसके द्वारा आप संतुष्ट हो गए। और इस विषय में हमने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते कहा था कि वो कार्य करो जो कि अनुकूल है भक्ति के लिए, वो जो प्रतिकूल है उसे क्या करना चाहिए जानना चाहिए। भगवान ने हमें अनेक इंद्रियां दी है, इस विषय में हमारे समक्ष अम्बरीश महाराज का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। अम्बरीश महाराज ने अपनी इंद्रियों का उपयोग किया भगवान की सेवा में। उदाहरण के लिए नेत्रों का, नेत्र का उपयोग आप कैसे कर सकते हो? हाँ, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन लेने के लिए। और आजकल इंटरनेट की कृपा से अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इस्कॉन के कई मूर्ति विग्रह का दर्शन रोज ले सकते हो। मायापुर, वृंदावन, दिल्ली, बॉम्बे सबका दर्शन रोज ले सकते हो। तो आंखों द्वारा हमें भगवान के विग्रह का दर्शन लेना चाहिए। अम्बरीश महाराज ने पैरों का उपयोग किस लिए किया? मंदिर में चल के जाने के लिए। तो आप आज पैरों का उपयोग कर सकते हो किस लिए? मंदिर चल के जाने के लिए। आप कहोगे मंदिर तो बहुत दूर है, महाराज चल के कैसे जाए, रोज पद यात्रा करना पड़ेगा। तो फिर पैरों का उपयोग करो मोटर चलाने में, साइकिल चलाने में, रिक्शा चलाने में, स्कूटर चलाने में, पर भगवान के मंदिर पहुंचने के लिए। फिर उन्होंने अपने हाथों का उपयोग किस लिए किया? भगवान के मंदिर को साफ करने में। कई बार जब आप मंदिर में आते हो आपको एक छोटी सेवा दी जाती है, भगवान का मंदिर साफ करो। तो कभी कभी हम सोचते हम क्या भंगी हैं क्या, ये तो भंगी का खप है। कई बार भगवान के भंगी भी बनो तो बड़ी अच्छी बात है ना। उदाहरण के लिए रथ यात्रा शुरू होने से पहले महाराज प्रताप रुद्रा पूरी सड़क को सोने के झाड़ू से साफ करते थे और फिर उस सड़क को गुलाब के पानी से धोते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि राजा होते हुए इतनी विनम्रता से ये सेवा कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें उनकी जो अद्भुत लीला वो प्रकट कर रहे थे उसका दर्शन किया। क्या अद्भुत लीला थी कि रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु जी ने हर रथ के साथ सात कीर्तन मंडियों की योजना की थी। पहले तो वो हर हर कीर्तन मंडी में जाकर नाच रहे थे, फिर उन्होंने अपना विस्तार किया और एक साथ सारे कीर्तन मंडियों में उपस्थित थे। और ये दिव्य दर्शन केवल उनके निकट के प्रिय भक्तों को प्राप्त हुआ जिनमें से एक थे महाराज प्रताप रुद्रा। तो अम्बरीश महाराज ने हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने में। अगर आप मंदिर में आते हो और आपको मंदिर साफ करना पड़े तो बुरा नहीं मानना। श्री अम्बरीश महाराज ने अपने नाकों का उपयोग किया किस लिए? भगवान को अर्पण किया फूल को सूंघने के लिए। कानों का उपयोग किया भगवान का गुणगान सुनने के लिए। जीभ का उपयोग किया जीभ का भगवान का गुणगान के अलावा एक और कार्य है विशाल ग्रहण करना। साक्षी से नाम दस साधवी ठाकुर है सैड There's a tongue, the belly, the genitals are all in a straight line. So if you control your tongue, then you can control the belly and the genitals. So Bhakti Sananda Ji samjhate hain ki agar aap jeev ko vash mein la sakte ho, to phir dusri indriyon ko bhi vash mein la sakte ho. So is prakar hame Amrish Munaj ke udaharan se प्रेरणा लेनी चाहिए मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में। आगे एंड मे आवर माइंड्स